நமோ ஹிந்தானம், நமோ சிக்கானம், நமோ ஆரியானம், நமோ உஜ்ஜானம், நமோ லோயே திரிகாவர்த்தி சௌவசாமி. மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோகரி, மங்களம் குண்டு குண்டாரியோ, ஜெயன் தர்மோஸ்து. சர்வ மங்கல்ய மங்கல்யம், சர்வ கல்யாண காரகம், பிரதானம் சர்வ தர்மானம், ஜெயனம் ஜெயத்து சாஸ்திரம். ஓம்கார பிந்து சன்யுக்தம் நித்யம் ஜாயந்தி யோகினம் காமதம் மோக்ஷதம் செய்வ ஓம்கார நமோ நம. நம சமய சாராய சுவானுபூத்தியாய சகாஸ்து சீர்த்தபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தர்சிதி அக்னாந்தி நிராம்ஹானாம் நானா ஜன் சலாகயா சக்ஷுரும் மிலிதம் யேனம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஆத்மா ஜ்ஞானம் ஸ்வயம் ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானாத் அன்யத் கரோதி கிம் பரபாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹயம் வ்யவஹாரம். மங்கள்மய மங்கள்கரம் வீதராக விஜ்ஞானம் நமுதா ஹி ஜாதே பய ஹரிஹந்தா தி மகான். ஓம் நம சிதேவிய நம சிதேவிய நம சிதேவிய. त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र भगवान का ये परम पवित्र शासन जिस परंपरा में भरत क्षेत्र के कलिकाल सर्वज्ञ कुनकुनाचार्य भगवान की आमना, जिनकी परंपरा में अमृतचंद्र आचार्य भगवान जैसे समस्त टीकाकार आचार्य भगवान, जिसकी परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री जैसी महान विभूति और जिनके शासन में बाबूजी जैसे समर्थ धर्मात्मा, एक सभी का संयोग हुआ। वस्तु की व्यवस्था अत्यंत स्पष्ट हुई। जीवमानी के अंदर में जो कुछ भी बात कही है उनका प्रयोजन विकराजता है, इस बात को बरकरार रखते हुए जितनी व्यवहार की बातें हैं, एक बात तो यह समझनी चाहिए कि जिस ज्ञानी पुरुषों को निश्चय होता है तो निश्चय पूर्वक ही व्यवहार उनको लागू करता है। जिनको निश्चय यानी कि आत्मा की अनुभूति नहीं हुई उसको व्यवहार नहीं होता। तो जहाँ पे जो कथन किए गए हैं उनका प्रयोजन समझकर, किस हेतु से यह बात कही गई है इसको समझकर निश्चय की बात से आना है, परमार्थ की बात से आना है, सत्याग की बात से आना है, जहाँ से अपना शुद्धात्मा का दर्शन हो सके। अभी शुद्धात्मा के दर्शन की विधि में दो लेख, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का विषय बाबू जी के चले दो लेख, उसमें अपन ने वस्तु की व्यवस्था में श्रद्धा और श्रद्धा का श्रद्धेय की व्यवस्था भली भांति समझी। अब इस चैतन्य की चहल पहल के अंतिम लेख ज्ञान स्वभाव सम्यक ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभाव, इस लेख में बाबूजी ने ज्ञान स्वभाव की जो व्यवस्था है जो आज पूज्य गुरुदेव श्री ने भी खेती काटी का समय और अभी अपने बाबू जी का जो परम आध्यात्मिक वस्तु व्यवस्था की रूपरेखा ज्ञान स्वभाव और श्रद्धा की व्यवस्था से सुना, सही में इसके पश्चात तो कुछ कहने का नहीं रह जाता। एक ऐसी पूर्ण व्यवस्था मतलब पूरा जिनागम का जो सार है वो यहाँ पर है। जीवों को ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ नहीं करने का, और कुछ नहीं करने का मन मैं परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय करना ये अनंत पुरुषार्थ है, जिसके अंदर में श्रद्धा सिर्फ मैं के अलावा और कुछ नहीं कहती। तो कहा बाबूजी तो सुनो तक जो कुछ भी होता है उसका आत्मा होता, इसके अंदर में पर्याय का भला है, पर्याय पर्याय का ममता छोड़े ममत्व छोड़े उसमें पर्याय का भला है जो फिर तक पहुँच जाएगी। तो ये जो दृष्टिकोण और ये जो पहलू जो है उसको भली भांति अपन लक्ष्य में ले, सारा जिनागम और स्वाध्याय का अर्थ यह होता है कि अपन पर्याय की व्यवस्था और द्रव्य स्वभाव की व्यवस्था मैंने अपने घर पे आ रहा है। स्वाध्याय का हेतु यह होता है कि अपने घर पे आ रहा है, मैंने प्रमाण की मर्यादा में आत्मा में आ गए और आत्मा की व्यवस्था को समझकर द्रव्य पर्याय की व्यवस्था को समझकर उस सारी व्यवस्था के अंतर्गत तो उसमें से निश्चय को निकालकर यानी द्रव्य स्वभाव को निकालकर यानी शुद्ध नहीं के विषय को निकालकर मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा अहम हो वो तो एकमात्र हेतु और प्रयोजन है। अब इसका चिंतन कैसे हो इसका मनन कैसे हो ऐसा बहुत प्रश्न कल शाम को आया। तो इस संदर्भ में इतना ही कहना है कि देखिए जितनी भी बातें हैं इसके अंदर में यदि आपके अंतरंग में एक कण भी कर्तृत्व पर्याय का नहीं रहा तो उसी कण अनुभूति होगी उसको समय नहीं कहना। बहुत समय से हमारा चिंतन चलता है, बहुत समय से हमारा अध्ययन चलता है, मनन चलता है, लेकिन हम आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। एक बात का पुरस्कार है कि आपका कहीं ना कहीं कर्तृत्व पड़ा हुआ है, एक कर्ता बना निकल जाए और अकर्ता स्वभाव का जोर आवे, चारों ओर से अकर्ता स्वभाव के ऊपर वजन आवे पर अनुभूति न हो ऐसा हो नहीं सकता। इसमें समय की कोई वार्ता ही नहीं, यदि समय की वार्ता दिखती है तो उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं कर्ता बुद्धि, कहीं ना कहीं पर्याय में ममत्व, कहीं ना कहीं पर्याय दृष्टि भरी पड़ी हुई है जिसकी वजह से द्रव्य दृष्टि हो नहीं पाएगी। अब अपन बाबू जी के माध्यम से इस बात को समझे कि ज्ञान स्वभाव क्या है। ज्ञान आत्मा का सार्वकालिक स्वभाव है, यह आत्मा की एक असाधारण शक्ति तथा लक्षण भी है। अनंत जड़ चेतन तत्वों के समुदाय इस विश्व में ज्ञान से ही चेतन की भिन्न पहचान होती है। वह आत्मा का एक प्रमुख गुण है जो विश्व का सविशेष सार्वकालिक प्रतिभासन करता है। आत्मा के अनंत गुण तथा धर्म भी ज्ञान में ही प्रतिबिंबित होते हैं, मानो ज्ञान में ही आत्मा का सर्वत्व समा रहा हो। ये ज्ञान का वैभव ही ऐसा है कि उनके अंदर सारा ही आत्मा। आज गुरुदेव ने भी कहा कि ज्ञान से आत्मा, और बाबू जी ने भी कहा कि ज्ञान से आत्मा, क्योंकि इसके अंदर में भेद नहीं है कुछ भी। ज्ञान तो आत्मा, इसके अंदर में ज्ञान माने गुण ना समझे, ज्ञान माने पूरा ज्ञान, ज्ञान माने पूरी वस्तु पूरा आत्मा। इसलिए ज्ञान का जब भेद को समझाना हो तो अभेद आत्मा उसको भेद करके समझाते हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, और अभेद का भेद करके फिर भेद को अभेद करते हैं कि ज्ञान को आत्मा, तो इससे आगे नहीं जाना। तो इसकी व्यवस्था क्या है ये देखते हैं। श्री सोमेश्वर परमागम ने आत्मा को ज्ञान मात्र ही कहा है। पूरे सोमेश्वर के अंदर में कदम कदम के गाथा गाथा के आचार्य भगवान ने आत्मा को ज्ञान मात्र ही कहा है। अब ज्ञान मात्र कहने से इसकी व्यवस्था को समझना है। अब ये व्यवस्था बाबू जी स्वयं उसमें स्पष्ट करेगी, उसलिए अभी मैं उसका स्पष्टीकरण नहीं करता हूँ, पर थोड़ा आगे चलते हैं। लोग में भी किसी एक ऐसी विशेषता की अपेक्षा किसी व्यक्ति को संबोधित करने की पद्धति है कि जो उसका संपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके। कोई व्यक्ति हो उसको ऐसा संबोधन किया जाएगी जिससे पूरी की पूरी व्यक्ति की पहचान हो सके। तो ज्ञान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे पूरे आत्मा की पहचान हो सकती है, एक ऐसा गुण है बाकी जो बाकी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। एक आत्मा ही ऐसा है जिसके अंदर में ज्ञान एक ऐसी व्यवस्था है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से सारे का सारा आत्मा लक्ष्य में आता है, प्रकट होता है, अनुभूति में आता है। जैसे किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नाम से संबोधित करते हैं न्याय तत्व उसकी एक ऐसी विशेषता है जिसमें वह सब मनुष्य से भिन्न पहचाना जाता है। यदि किसी को न्यायाधीश कहा जाए तो एक ऐसी पहचान है कि जिससे वो सब बाकी सब से वो अलग पड़ जाते हैं। यद्यपि उसमें अन्य सामान्य मनुष्य जैसी तथा व्यक्तिगत अपनी अनेक विशेषताएं भी है, वो केवल न्यायाधीश ही नहीं है किंतु न्यायाधीश संज्ञा में उसका संपूर्ण सामान्य विशेष व्यक्तित्व गर्भित हो जाता है। अतः न्यायाधीश शब्द उसका संपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह व्यक्ति जितना कुछ है वह सब न्यायाधीशत्व में समृद्ध है। न्यायाधीश खाली न्यायाधीश ही ऐसा नहीं है, उसका एक सामान्य विशेष व्यक्तित्व है और जब न्यायाधीश कहते हैं तो पूरा का पूरा व्यक्तित्व उसके अंदर में समाविष्ट हो जाता है। तो ज्ञान देने से ज्ञान गुण की बात नहीं है, ज्ञान कहने से पूरा का पूरा आत्मा सामान्य विशेषात्मक आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा पूरा का पूरा उसके अंदर में समाविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान आत्मा के अनंत गुण धर्मों के समान, यद्यपि आत्मा का एक गुण विशेष ही है किंतु उसके बिना आत्मा पहचाना ही नहीं जा सकता। एक ऐसा गुण विशेष है कि जिसके बिना आत्मा का पहचान नहीं हो सकता। ज्ञान का व्यापार प्रकट अनुभव में आता है। ज्ञान एक ऐसा स्वभाव है कि जिसका व्यापार प्रकट अनुभव में आता है, अन्य शक्तियों में यह विशेषता नहीं है। आत्मा की जो अन्य शक्तियाँ हैं उसमें विशेषता नहीं है। श्रद्धा को श्रद्धा के बारे में नहीं पता, श्रद्धा का कार्य क्या है ये भी श्रद्धा को नहीं पता। इसकी जाहिरात लेकिन ज्ञान करता है कि श्रद्धा का कार्य अहम करना है, तो सही में श्रद्धा का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की श्रद्धा होती है। आनंद का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का आनंद होता है। ज्ञान इतना वैभवशाली है, ज्ञान इतना सामर्थ्यवान है, ज्ञान ऐसा एक विशेष गुण है कि जिसके अंदर में उसकी विश्व ही ज्ञान का बना हुआ होता है। इसकी अद्भुतता और अलौकिकता सही में विस्मयकारी है। अन्य शक्तियों में यह विशेषता नहीं है, अतः उपयोग और लक्षण की छाया में अनंत पदार्थों के समुदाय इस भूले मिले के विश्व में ज्ञान से ही आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व सिद्ध होता है। क्या कहते हैं, आत्मा के अंदर में अनंत शक्तियां हैं। अब अनंत शक्तियां एक ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिनका स्वभाव सविकल्प है। सविकल्प है माने मन का अवलंबन वाला विकल्प की चर्चा नहीं है। सविकल्प माने ज्ञान ज्ञान को भी जानता है और ज्ञान बाकी अनंत गुणों को भी जानता है। अब श्रद्धा को नहीं पता कि श्रद्धा का कार्य क्या है, आनंद को नहीं पता कि आनंद में जो स्वसंवेदन होता है वो कैसा होता है, लेकिन ये सारा का सारा जानने वाला जो होता है वो ज्ञान है। तो ज्ञान का जो कार्य जो है तो उसके अंदर में जो कुछ भी है वो ज्ञान से बना हुआ है। ज्ञान की रचना जो है, ज्ञान का वैभव जो है वो पूरा ज्ञान शरीर से बना हुआ है। मतलब आत्मा ज्ञान शरीर से बना हुआ है, ज्ञान शरीर ही उसकी व्यवस्था है। तो ज्ञान क्या चीज है, बाबू जी इसमें बहुत अद्भुत से अद्भुत तरीके से इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, उपयोग और लक्षण की छाया में, उपयोग लक्षण है ना, जीव का उपयोग लक्षण है। उपयोग के माध्यम से पहचाना जाता है कि यह जीव है, कि जीव का लक्षण क्या है। ठीक है, अभी बात चलती है प्रमाण जी की, अभी अपने कोई भी कहीं से किसी चीज से मिलावट ना करे। कल तक का विषय था वो विषय अलग था, वो प्रकरण अलग था, फिर प्रकरण अलग है, एजेंडा अलग है, बात जहाँ से शुरू की गई पहुंचाना वहीं पर है। जहाँ पे दृष्टि का विषय जहाँ पे पहुंचाता है, ज्ञान का विषय भी वहीं पे ले चलेगा, लेकिन जहाँ से शुरुआत की गई है वहाँ पे क्या है, तो उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है, प्रमाण जीव का लक्षण। तो लक्षण तीन प्रकार के होते हैं, जीव का लक्षण, अपरिणामी का लक्षण, अनुभूति का लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग है, अपरिणामी का लक्षण परम परिणामी भाव है, और अनुभूति का लक्षण स्वसंवेदन है। अभी यहाँ पे उपयोग लक्षण की जो बात है, पूरे जीव पदार्थ की, पूरे आत्म पदार्थ का लक्षण क्या है, तो कहते हैं उपयोग है। उपयोग लक्षण की छाया में अनंत पदार्थों के समुदाय इस जुड़े मिले से विश्व में ज्ञान से ही आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व सिद्ध होता है। ज्ञान ही ऐसा है जिससे वो बाकी पूरे जुड़े मिले विश्व से अपनी सत्ता, अलग सत्ता, भिन्न सत्ता, अपना अस्तित्व एवं व्यक्तित्व दोनों ही सिद्ध होता है। किससे? ज्ञान के माध्यम से। न केवल आत्मा वरन जगत के अस्तित्व की सिद्धि भी ज्ञान ही करता है। आत्मा की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि करता है। ज्ञान की व्यवस्था क्या है कि ज्ञान जो है वो जगत की सिद्धि करता है, क्षेत्रवे की सिद्धि करता है, क्षेत्रवे की अस्तित्व की सिद्धि करता है, और अपने आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों करता है। तो ज्ञान का वैभव, मैंने ज्ञान के अंदर में आत्मा का अस्तित्व भी प्रतिभाषित होता है और उसकी अनुभूति भी होती है, अनुभव में भी आ रहा है। तो ज्ञान के अंदर में आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि और छह पदार्थों की सिद्धि, तो जगत की सिद्धि भी ज्ञान ही करता है। ज्ञान जगत के निगुप्तम रहस्य का उद्घाटन करता है। अतः ज्ञान ही आत्मा का सर्वस्व है और इसके बिना विश्व में आत्मसन्न किसी चैतन्य तत्व की कल्पना ही व्यर्थ है। क्या कहते हैं? ज्ञान जगत के निगुणतम रहस्य का उद्घाटन करता है। अतः ज्ञान ही आत्मा का सर्वस्व है, क्योंकि ज्ञान के पास चक्षु है, ज्ञान देखता है, बाकी सारे के सारे गुण अंधे हैं, लेकिन देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, अनंत गुणों की पहचान करने वाला, पहचान करवाने वाला, जगत के छह पदार्थों का परिचय देने वाला ज्ञान ही है। अतः ज्ञान ही आत्मा का सर्वस्व है और उसके बिना विश्व में आत्मा समझने वाला किसी चैतन्य तत्व की कल्पना ही व्यर्थ है। यदि ज्ञान नहीं होता तो क्या होता? बाबूजी ने भी श्रद्धा और ज्ञान की भी चर्चा की कि ज्ञान रहित का श्रद्धा हो ही नहीं सकता, गए चीज के बराबर। तो कहते हैं कि विश्व में आत्म सुनना वाला किसी चैतन्य तत्व की कल्पना ही व्यर्थ है। कोई भी चैतन्य तत्व की बात की जाए तो उसमें ज्ञान से ही उसका परिचय हो सकता है। जैसे न्यायाधीश से ही उसका परिचय होता है, ऐसे ज्ञान से ही आत्मा का परिचय होता है। तो उसके बिना आत्मा का परिचय किया नहीं जा सकता। ज्ञान के स्वभाव को हृदयगम कर लेने पर संपूर्ण आत्म स्वभाव की समझ ही सुलभ हो जाती है। ज्ञान के स्वभाव को हृदयगम कर लेने पर संपूर्ण आत्म स्वभाव की समझ ही सुलभ हो जाती है। अतः मनीषी ऋषि कुंडकुंड ने अपने समयसार परमागम में आत्मा को ज्ञान मात्र ही कहा है। ज्ञान मात्र कहने में आत्मा का मात्र ज्ञान गुण नहीं है। इसलिए बात को बहुत अच्छी तरीके से समझे। अब न्यायाधीश कहा तो न्यायाधीश माने वो जो जज की कुर्सी पर बैठकर जो जजमेंट देता है, कितना ही न्यायाधीश है। इसी तरह से ज्ञान से आत्मा का परिचय दिया गया तो जो आत्मा का आनंद गुण में से एक ज्ञान गुण है, उसमें ज्ञान गुण की ही बात है, ऐसा नहीं। गुरुदेव ऐसे कहते थे ज्ञान माने जाए ज्ञान मन पूरा आत्मा, ज्ञान मन आत्मा, ज्ञान मन सर्वस्व, सर्वस्व मन कहीं से आप गुण मत लेना। कोई बात बाबू जी कहते हैं, ज्ञान मात्र कहने में आत्मा का मात्र ज्ञान गुण नहीं, वरन अनंत गुण धर्मों के समुदाय, एक अखंड ज्ञान आत्मा की ही प्रतीति होती है। क्या होता है? अनंत गुण धर्मों के समुदाय एक अखंड ज्ञायक आत्मा की ही प्रतीति होती है। ज्ञान की स्मृति मात्र में ही अखंड चेतन तत्व अपनी अनंत विभूतियों के साथ दृष्टि में आता है। अनंत विभूतियों के साथ, अनंत वैभव के साथ, अनंत गुणों के साथ एक रूप नायक, अखंड ज्ञायक है ना, एक अखंड ज्ञायक आत्मा की ही प्रतीति होती है। अखंड की बात आई तो एक बात याद आ गई, दो दिन पहले मैंने कहा था कि आत्मा एक प्रजाति है, अब है तो आत्मा असंख्य प्रजाति, लेकिन अखंडता की अपेक्षा से देखा जाए तो एक प्रजाति माना एक प्रजाति की बात नहीं है, अखंडता की अपेक्षा से एक है तो एक प्रजाति है। ये व्यवस्था इतनी सुंदर है, देखिए अब ज्ञान का है तो यहाँ पे क्या कहा, अखंड ज्ञान आत्मा, अब ज्ञान का है तो हर बार संभव नहीं है कि इसको क्या कहना है, तुमको समझना है कि यहाँ एजेंडा पे जो ज्ञान की बात है अखंड ज्ञाय एक आत्मा की बात है, ज्ञान स्वभाव की बात है, जिसके स्वभाव अद्भुत होता है, स्वभाव अलौकिक होता है, स्वभाव निरपेक्ष होता है, उस स्वभाव का भान होते ही ज्ञान हो जाए। जितने भी इस दो दिन से अपनी जो तीन दिन से ज्ञान गोष्ठी करी उसके अंदर में जितने भी प्रैक्टिकल की बात, प्रयोग की बात, एकांत की बात, जितनी भी बातें आए हैं उसके अंदर में इस सबका हेतु यह है कि प्रत्येक जीव को सिर्फ थियोरेटिकली नहीं चलना चाहिए। थियोरेटिकली अपन ने गुरुदेव की बात सुन ली, बाबू जी की बात सुन ली, शास्त्रों की बात पढ़ ली, स्वाध्याय कर लिया, ठीक है, फिर बात को अंतरंग में बैठनी चाहिए, इसका विश्वास होना चाहिए, इसका इकरार होना चाहिए कि ऐसा ही हो, और उसके अंदर में परका तत्व तो छूटना चाहिए, मोहम्मद तो छूटना चाहिए, परका मोहम्मद तो हमारा पर्याय का मोहम्मद तो छूटना चाहिए, और जब पर्याय का मोहम्मद तो छूट जाता तो समय एक तो हो जाता, तो समय एक तो होते ही अनुभूति उसी का नाम अनुभूति। तो ये बात आज जितने सारे प्रश्न है उसका यदि हृदय देखा जाए तो हृदय है कि अपन प्रैक्टिकल नहीं है, अपन सारी बातें लेकर चलते हैं कि इसमें तो, लेकिन व्यवहार को तो ऐसा भी कहा गया, ऐसा व्यवहार को आप एक बात सुनो कि ग्यारहवीं दशा के अंदर में सारा का सारा व्यवहार को आपको क्या बदता कहा उनका, और उसमें कौन सा व्यवहार बन गया, कोई व्यवहार जो व्यवहार बन गया वहां पर उपचरित अनुपचरित सद्भुत असद्भुत कोई व्यवहार बचा है, सारा का सारा व्यवहार आपको किया, फिर आप रखो उस पति के अंदर में मुक्त मार्ग प्रकार से कोई समझता तो जो उसने ये बात को स्पष्ट किया है कि आदर करना तो निश्चय कर, आदर करना तो क्या होता, बाकी जानने की बात है तो ठीक है, ज्ञान जान लेता है, लेकिन जब सत्कार करने की बात आ रहा है, आदर करने की बात आ रहा है तो एक की बात होनी चाहिए, निश्चय की बात होनी चाहिए, स्वभाव की बात होनी चाहिए, अपन उस स्वभाव की चर्चा करते हैं कि जिस स्वभाव का लक्ष्य होते ही ये अंदर पहुंच जाता है, समय नहीं लगता, यदि समय लगा होता तो सुगंध को एक प्रवचन के अंदर में अनुभूति नहीं होती, गुरुदेव को समझता बोलते अनुभूति नहीं होती, श्रीमद जी को समझता बोलते अनुभूति नहीं होती, बैंसर को 17 साल की उम्र में, बैंक को 21 साल की उम्र अनुभूति नहीं होती, यदि कठिन होता तो अपन बात को अपने रहस्य को समझे, तात्पर्य को समझे, वस्तु की व्यवस्था को समझे, स्वभाव को समझे, पक्ष में नहीं चलना है, निष्पक्ष होकर जो बात जिस अपेक्षा की है उस अपेक्षा को लक्ष्य में रखकर निरपेक्षता पे आना, और निरपेक्षता पे आया कैसे जाता है इसका विश्लेषण यहाँ पर है। ज्ञान की स्मृति मात्र में अखंड चैतन्य तत्व अपनी अनंत विभूतियों के साथ दृष्टि में आता है, ज्ञान की स्मृति मात्र में ही देखिए, पहले कह दिया कि ज्ञान कहने से अनंत गुणों के गुण धर्मों के समुदाय एक अखंड ज्ञात आत्मा की ही प्रतीति होती है, एक बात। दूसरी बात, ज्ञान की स्मृति मात्र में ही, ज्ञान को याद करते ही, ज्ञान को लक्ष्य में लेते ही अखंड चेतन तत्व अपने अनंत विभूतियों के साथ दृष्टि में आता है। इनका स्वभाव है ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान से आत्मा। आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया, जिनु जे हो ते तेज हो, जिनु जे हो ते तेनु न हो, तेनु होने से दूसरा होगा, पर जिनु जे हो ते तेज हो तो स्वयं जीव हो। क्योंकि आज सिद्धांतों की गंगा जिस तरह से इस युग के अंदर में बहती है, जीव अपने सौभाग्य की कल्पना ही नहीं कर सकता। सर्व प्रकार में उत्तर आगे चुकी होता है, जिसके अंदर में भक्ति के ज्ञान को स्मृति में लेते ही अनंत विभूति वाला अखंड एक ज्ञान दृष्टि में आ जाता है। इसमें गुण गुण की चर्चा नहीं है, पूरा आत्मा पूरा मैं। ज्ञान में एक समय के परिणाम को देखिए, उसमें आत्मा का सर्वत्र ही परिणमित है। ज्ञान के एक क्षण के परिणाम को देखिए, उसमें आत्मा का सर्वत्र ही परिणमित है। उसका अर्थ क्या हो, एक समय का परिणाम ज्ञान का, उसमें आत्मा का सर्वत्व ही परिणमित है। मैंने आभार गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है, परिणमित है। परिणाम में आत्मा को लाना नहीं, परिणमित है। इनका स्वभाव देखा, इनकी व्यवस्था ही है कि ज्ञान के एक समय के परिणाम को देखिए, उसमें आत्मा का सर्वत्र ही परिणमित है। परिणमित है माने एक समय के पर्याय में आत्मा की मौजूदगी है, विद्यमानता है, हजरा हजूरता है, प्रकटता है। शांताबंध का बहुत प्रिय शब्द कि ज्ञान के अंदर में आत्मा हजरा हजूर है, जाजल्यमान चैतन्य ज्योति हजरा हजूर है, सर्वत्र ही परिणमित है, आपको परिणमाना नहीं है। सिर्फ लक्ष्य, सिर्फ दृष्टि तो एनलार्जमेंट हो जाता है। अति अद्भुत व्यवस्था है, ये अनुभूति के लिए इतनी परेशानी है ना, और उसकी परेशानी बढ़ाती है। इतनी परेशानी की स्वभाव के लिए हो जाए तो अनुभूति हो जाए। अतः आत्मा मानो ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार गुण गुण के अभेद दृष्टि में ज्ञान आत्मा ही है। जीव ने ज्ञान के अंदर गुण समझा, ज्ञान कहते गुण नहीं, ज्ञान कहते आत्मा, ज्ञान कहते जायक, ज्ञान कहते पूरी वस्तु, ज्ञान कहते आत्मा का सर्वस्व। तो गुण गुणी का भेद नहीं रहा, गुण देखा तो गुण गुणी का भेद रहा, गुण नहीं पूरी वस्तु पूरा आत्मा सर्वस्व एक समय के परिणाम में परिणमित है, परिणमित है। आपको परिणमाना नहीं है आत्मा को, परिणाम में आत्मा को लाना नहीं है। प्रकट है वहां पे आत्मा, विद्यमान है। यह ज्ञान आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है। जो स्वभाव त्रैकालिक होता है उसका वस्तु से कभी जय नहीं होता है। तो वस्तु की भ्रांति वह सदा पूर्ण अखंड और शुद्ध होता है। पूर्ण होता है, अखंड होता है और शुद्ध होता है। वस्तु स्वभाव की ही बनी होती है। वस्तु पूरी ज्ञान स्वभाव की बनी हुई है। ज्ञान शरीर ही आत्मा, आत्मा ज्ञान शरीर से बना हुआ है। वो ज्ञान से बना हुआ आत्मा है। पूरा आत्मा में ज्ञान पसरा हुआ है ना। वस्तु उस स्वभाव की ही बनी होती है। आगे कह दिया, ज्ञान आत्मा का एक त्रैकालिक स्वभाव है। जो स्वभाव त्रैकालिक होता है उसका वस्तु से कभी व्यय नहीं होता है। और वस्तु की भांति वह सदा पूर्ण अखंड और शुद्ध होता है। वस्तु उस स्वभाव की ही बनी होती है, अतः वह कभी उससे पृथक नहीं हो किया जा सकता। जैसे उष्णता अग्नि का स्वभाव है, उष्णता अग्नि का सर्वत्व ही है। ज्ञान का स्वभाव जानना अर्थात वस्तु का सर्वांग प्रतिभाषण करना है। ज्ञान का स्वभाव जानना, जानना माने क्या, जानना माने क्या, अर्थात वस्तु का सर्वांग प्रतिभाषण करना, इसका नाम जानना। क्योंकि स्वभाव असहाय, अकृत्रिम एवं निरपेक्ष होता है, अतः ज्ञान भी जगत से पूर्ण निरपेक्ष एवं असहाय रहकर अपना अनादि अनंत जानने का व्यापार करता रहता है। कैसे करता है? जगत से पूर्ण निरपेक्ष एवं असहाय रहकर जगत की अपेक्षा बिना, जगत की सहाय लिए बिना, अपने से अपने में अपने अनादि अनंत जानने का व्यापार करता रहता है। इसको किसी का आधार नहीं है। ज्ञान को स्वभाव निरपेक्ष होता है। यदि अपन शक्ति की बात करें तो शक्ति व्यक्ति सापेक्ष होती है। यदि ज्ञान शक्ति की बात करें तो जानने के सापेक्ष होती है। दर्शन शक्ति की बात करें तो देखने के सापेक्ष होती है। लेकिन स्वभाव जो होता है वो निरपेक्ष होता है। उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती। देखिए अनादि अनंत जानने का व्यापार करता है तो उसके ऊपर में क्या कहा, ज्ञान भी जगत से पूर्ण निरपेक्ष एवं असहाय रहकर अपना अनादि अनंत जानने का व्यापार करता रहता है। अपने जानने के कार्य के संपादन हेतु ज्ञान को जगत से कुछ भी आदान प्रदान नहीं करना पड़ता। जानने के हेतु, जानने का कार्य संपादन करने के हेतु ज्ञान को जगत से कुछ भी आदान प्रदान, किसी भी प्रकार की अपेक्षा, किसी भी प्रकार की सापेक्षता, कोई भी कारण कार्य संबंध नहीं कि बाहर में पदार्थ है तो ज्ञान में जानने में आ रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी आनंद बना निरपेक्ष बने, अपेक्षा बिना, सापेक्षता बिना, लक्ष्य दिए बिना ज्ञान इतना वैभवशाली है, इतना संपन्न है, इतना वैभववान है, स्वभाव है, निरपेक्ष होने, असहाय लेकर, किसी की भी सहाय लिए बिना, किसी की भी अपेक्षा बिना, किसी भी उपस्थिति हो नहीं हो उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपने जानने के कार्य के संपादन हेतु ज्ञान को जगत से कुछ भी, कुछ भी, कुछ उन्होंने जरा भी, लेख मात्र भी, रंग मात्र भी आदान प्रदान नहीं करना होता। अब दृष्टांत से इस बात को बाबू जी स्पष्ट करते हैं। दर्पण के समान है, ज्ञान की वस्तु को जानने की रीति यह है कि वह सदा एक रूप अखंड स्वरूप को सुरक्षित रखकर ये आकार यानी ये जैसे आकार परिणत होता रहता है। क्या करता है दर्पण के समान? दर्पण के समान ज्ञान की वस्तु को जानने की रीति यह है कि वह सदा एक रूप अखंड स्वरूप को सुरक्षित रखकर खंडित नहीं होता। अनंत पदार्थ ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंबित तो हो प्रतिभाषित तो हो तो खंडित नहीं होता, सदा एक रूप रहता है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान ये रूप नहीं होता, एक रूप रहता है, अखंड स्वरूप को सुरक्षित रखता हुआ अपनी अखंडता बरकरार रखता है। अनंत पदार्थ को जानते हुए उसके अंदर में खंड नहीं होता, अनेक रूप नहीं होता, जाने अनेक को रहे एक रूप, जाने अनंत को रहे अखंड, तेजा को भाव है। क्योंकि उसका कारण क्या है, क्यों एक रूप रहता है, क्यों अनंत रूप नहीं होता? क्यों जो अनंत के अनंत पदार्थ जो उसके अंदर में प्रतिबिंबित हुए उसने अनंत पदार्थों से कुछ लिया ही नहीं, न तो उसे अनंत पदार्थ की सापेक्षता है, न तो अनंत पदार्थों की मौजूदगी उसका कारण है। उसने एक रूप रहता हुआ अखंड स्वरूप को सुरक्षित रखकर ये आकार ये जैसे आकार परिणत होता रहता है, जैसे ये है जैसे ये आकार रूप जैसे ये है जैसे पदार्थ है ऐसे आकार रूप परिणत होते रहता है। ये आकार परिणति ज्ञान का विशेष भाव है, ये आकार परिणति ज्ञान का विशेष भाव है। और इस ज्ञाकार परिणति में ज्ञानत्व का अन्वय उसका सामान्य भाव है। एक वाक्य के अंदर में पूरी ज्ञान की व्यवस्था, पूरी से पूरी ज्ञान की व्यवस्था अत्यंत स्पष्ट। ज्ञाकार परिणति ज्ञान का विशेष भाव है, जैसे ये पदार्थ है ऐसा आकार ज्ञान में हुआ इसका विशेष भाव है। और उस ज्ञाकार परिणति में जैसे ये है उस आकार हुआ जो परिणाम का जो स्वरूप है उसमें ज्ञानत्व का अन्वय, ज्ञान स्वभाव का अन्वय, ज्ञान की एक रूपता, ज्ञान का एक रूपना उसका सामान्य भाव है। ज्ञाकार उसके अंदर में होते हुए वो ज्ञाकार नहीं रहता। देखिए इसका स्पष्टीकरण के अंदर में भी ज्ञाकार के बाद में ब्रैकेट में ज्ञानाकार लिखा है। वास्तविकता तो यह है कि ज्ञान ज्ञाकार होता ही नहीं, क्योंकि वो जो आकार बना वो ज्ञान की अपनी पर्याय है, और अपनी पर्याय होने से अपनी पर्याय जितने भी पदार्थ के आकार है वो अपने से बना हुआ आकार है, उसने पर पदार्थ से कुछ लिया नहीं है, न पर पदार्थ का लक्ष्य किया है। देखिए एक बात अपन अभी स्वभाव की चर्चा करना कहीं से भी किसी के साथ में मिश्रा और मिलावट न करें। स्वभाव कैसा है, स्वभाव में होता क्या है, अब उस स्वभाव को माने तो क्या, नहीं माने तो क्या, उसका मान लिया तो सुधारों तक पहुंचे तो क्या ज्ञान, और नहीं माना तो क्या ज्ञान, तो एक अलग चर्चा है। अभी अपन ज्ञान स्वभाव की चर्चा की, उसके अंदर में ज्ञान के अंदर में व्यवस्था क्या है, तो ज्ञान ने जीव को क्या दिया और जीव से क्या लिया? अरे कुछ नहीं दिया, लेकिन उसका लक्ष्य तो दिया मैंने, उसकी सापेक्षता तो है मैंने, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कुछ भी आदान प्रदान, कुछ भी आदान प्रदान नहीं किया, तो नहीं करना पड़ता। जो जो अपने में पूर्ण है वो ऐसा वैभव आना है तो उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं है, ज्ञानाकर परिणति ज्ञान का विशेष भाव मैंने कहा जाता है गया था और गेयो से उसने कुछ भी नहीं लिया, कोई भी कार्यक्षा नहीं की, कोई भी अपेक्षा नहीं रखी, कोई भी लक्ष्य नहीं किया, तो जो परिणाम जो हुआ है वो सही में तो ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान का ही परिणाम है, ज्ञान की ही व्यवस्था है, ज्ञान अपने खुद उस आकार रूप परिणाम है। तो उसका मतलब क्या है कि दर्पण के समान है ना, तो दर्पण के सामने दीपक है, दर्पण के सामने अग्नि है, तो क्या है दर्पण के अंदर उस अग्नि से क्या है? इस अग्नि की सापेक्षता दर्पण को नहीं है, अग्नि है, अग्नि उतना है तो दर्पण उतना नहीं होता, अग्नि उसमें प्रवेश नहीं करती, दर्पण जलता नहीं, एक रूप रहता है। तब दर्पण के अंदर में जो अग्नि है उस अग्नि में बाहर की अग्नि से क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जो अग्नि है वो तो दर्पण की अग्नि है, दीपक है वो दर्पण का दीपक है, मोर है तो दर्पण का मोर है, मोर का मोर नहीं है, दीपक का दीपक नहीं है, दर्पण का दीपक है। तो अनंत पदार्थ जो ज्ञान के अंदर में प्रतिभाषित हुए ये ज्ञान का परिणाम है, ये ज्ञान का दीपक, ज्ञान का मोर, ज्ञान की अग्नि, तो सारा सारा ज्ञान का है। जीव का उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो ज्ञान आकार है, दर्पण आकार है, दर्पण दर्पण आकार है, ज्ञान ज्ञान आकार है, ये आकार उसमें हुआ ही नहीं। बाहर में क्या था उसको समझाने के लिए ज्ञाकार कहा गया, लेकिन ज्ञाकार होता नहीं है। छठी गाथा के दूसरे पैराग्राफ के अंदर में आचार्य भगवान ने ये बात को स्पष्ट की, जब लकड़ी के आकार रूप अग्नि हुई तो उसको बोल दिया कि वो जलाने वाला, तो उस आकार रूप तो हुई है, लेकिन हुई अपने से लकड़ी के कारण हुई क्या? तो ज्ञान जैसा ये है साकार तो वो तो के लिए ऊपर का जानना होगा, पर न जानना है अग्नि को के लिए दबाड़ना है, ज्ञान को के लिए जानना है, और अग्नि में तो जलाने वाली है न ज्ञान पर को जानने वाला है। क्या कर रहा हूँ, मोटा मिस्टर तो है तो बहुत सारी चूकने वाली है, जीव को लगभग के ऊपर हिला दे पूरा का पूरा, तो भैया तो मान क्या रखा है, व्यवस्था क्या है, तो मैं मान क्या रखा है, और फिर सारी समझदारी की चीजें पता के फिर निश्चय की बात करता तो पल्ले नहीं बोलते। जो जानने की बात होती है ना उसको जानने की जगह से छोड़ देनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होता है इन्फॉर्मेशन को अपन लेके चलते हैं, एयरपोर्ट पर देखे आजकल दो घंटा पहले पहुंच जाओ, इंटरनेशनल में 3 घंटा पहले पहुंच जाओ, अब 2 घंटा में बॉम्बे जैसे शहर में तो दूसरा अनाउंस कर दिया कि प्लेन छूट रहा है, प्लेन जा रहा है, प्लेन नंबर इतना, फ्लाइट नंबर इतना, यहाँ के लिए जा रहा है, अपने ऑफिसर में लगते हैं, क्या करते हैं सुन रहे हैं इन्फॉर्मेशन है, अपना जो फ्लाइट है उसका जब अनाउंसमेंट होता है तब उठते हैं। जिनवाणी के अंदर में भी काफी सारी बात है, सबसे बात अपने को लागू नहीं पड़ती, लेकिन सारी की सारी बात अपन अध्यात्म के अंदर में सब बात ऐसे पर लागू करते हैं, लेकिन इधर में तो ऐसा कहा ना, इधर में तो ऐसा कहा ना, यहाँ पे तो ऐसा कहा ना, तो लेकिन किसको कहा? अब करता है करता नहीं तो बोलिए तो पर को जानने वाला है, करता नहीं इसको सिद्ध करने के लिए जानने की बात कही, तो उसने मान लिया को पर का जानने वाला, तो जो मोटा मिश्रा को ही हुआ क्या हुआ? अपने ज्ञान की व्यवस्था को नहीं जाना कि ज्ञान की व्यवस्था क्या है, ज्ञान सही में ज्ञान अगर होता है ना अपने परिणाम में स्वयं अपने वैभव से तो ज्ञान आकार रूप ही रहता है, रहता है अपने आकार रूप, अपने ज्ञान के व्यवसाय रूप, ज्ञान के परिणाम रूप ही रहता है, उसमें जीरो का कुछ नहीं आता, जीरो से कुछ नहीं रहता है, देव को प्रति जानता है। और दूसरी बात यह है कि जितने देव पदार्थ है उसमें सब में प्रमेय तो है, वो प्रमेय तो है तो अपने आप ही ज्ञान में झलकते हैं, और ज्ञान में सशक्त है
तो ज्ञान केंद्र में जो लगते हैं प्रतिबिंबित होते हैं। एक बात इतनी सुंदर है, इतनी अलौकिक है, अपन समझे इस बात को अच्छी तरह से। ज्ञाकार यानी कि ज्ञानाकार परिणति ज्ञान का विशेष भाव, मैंने ज्ञाकार विशेष भाव नहीं है, ज्ञानाकार मैंने ज्ञाकार हुआ ही नहीं है। ये चीज सापेक्षता में ज्ञाकार कहा गया, लेकिन वो ज्ञानाकार परिणति ज्ञान का विशेष भाव है। तो उस ज्ञाकार परिणति यानी कि उस ज्ञानाकार परिणति में ज्ञानत्व का अन्वय उसका सामान्य भाव है। कैसे? जैसे दर्पण अपने स्वच्छ स्वभाव से वस्तुओं को अपने में प्रतिबिंबित करता है, अपने स्वच्छ स्वभाव से वस्तुओं को अपने में प्रतिबिंबित करता है। समय तो काफी हो गया है, दो
Thank you.